पृष्ठ संख्या 233 अध्याय 13 भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला का इतिहास वास्तव में भारतीय वास्तुकला का इतिहास ही है। मुसलमानों के पहले के भारतीय चित्रों यानी हिंदू, जैन या बौद्ध चित्रों की अपनी विशेषता रही है। वास्तविकता की जो दृष्टि उन्हें प्रेरणा देती है और उनके स्वरूप को महत्व देती है वह उनकी स्वयं की है। वे एक संस्कृति के सौंदर्य की अभिव्यक्ति है जो एक प्रजाति के अनुभव के संश्लेषण से उत्पन्न हुई है। एक ऐसा संश्लेषण जो विरोधी प्रवृत्तियों में संतुलन स्थापित करता है। सुख और दुख में, आनंद और कष्ट में, सफलता और असफलता में, सांसारिकता और पारलौकिकता में, जीवन में संलग्नता और जीवन के परित्याग में, इंद्रियों के वशीभूत होने और इंद्रियों महत्वाकांक्षा क्रियाशीलता और विषय भोग में, और संतुष्टि निष्काम भाव और शांति में। यह सच नहीं है कि भारतीय संस्कृति अन्य संस्कृतियों की तुलना में अधिक धार्मिक या कम भौतिकवादी है। वस्तुतः उसकी धार्मिक चेतना की गुणवत्ता और विषय वस्तु भिन्न है। जीवन की विपरीत शक्तियों के बीच संतुलन का जो बिंदु है वह अलग प्रकार से स्थित है। समूची मानसिकता एक भिन्न सांचे में ढली है और स्वाभाविकतः उससे जो भी निकला उस पर अलग किस्म की छाप है। इस चेतना का स्वरूप क्या था इसके संबंध में ऊपर बताया गया है, किंतु यह बताना शेष है कि यह चेतना भारतीय चित्रकला में कैसे प्रकट हुई। अजंता के भित्ति चित्र प्राचीन काल की भारतीय कला के एकमात्र अवशेष हैं। यद्यपि पौराणिक गाथाओं में कहा गया है कि देवताओं के वास्तुविद विश्वकर्मा के रूप में ब्रह्मा से इसका उद्गम हुआ। विद्वानों को ईसा पूर्व के साहित्य में कला के संदर्भ मिले हैं, जैसे विनय पिटक में और बाद में महाभारत, रामायण, शकुंतला आदि में। विभिन्न गुफाओं में बहुत प्राचीन काल के चित्र के अवशेष मिले हैं, किंतु ऐसे ठीक अवशेष अजंता में ही हैं, जो समूचे देश में प्रचुरता से फैली कला के चरित्र को सच्चे रूप में प्रतिबिंबित करते हैं। ये चित्र चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिरों की छतों और दीवारों को अलंकृत करते हैं। ऐसी संभावना है कि सभी 29 गुफा मंदिर चित्रों से अलंकृत थे, किंतु प्रकृति और समय के प्रहार ने और मनुष्य द्वारा किए गए विनाश ने उसके एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया है। इनका निर्माण ईसा की पहली 6 सदियों में हुआ था। वे कौन कलाकार थे जिन्होंने ये चित्र बनाए और उनके काम का उद्देश्य क्या था? ऐसा समझाया गया है कि ये कलाकार पुरोहित थे जो अपने आध्यात्मिक विकास में रत थे। यदि ऐसा है तो वे भारत के किन्हीं भी पुरोहितों से पूर्णतः अलग प्रकार के थे। ब्राह्मणों या हिंदू साधुओं ने ऐसे काम के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और यह संभव नहीं है कि उनके बौद्ध और जैन साथियों ने, जिनका जीवन न्यूनाधिक रूप में उनके ही अनुरूप था, ऐसा किया होगा। सारा काम सचमुच बहुत पेशेवर तरीके से किया गया और ऐसा नहीं लगता है कि इसे मठों के शौकिया कलाकारों ने बनाया होगा। चैत्य सभाकक्ष पेशेवर वास्तुकारों और कारीगरों के द्वारा उकेरे गए थे, क्योंकि वे भूमि पर निर्मित किए गए थे, और उनके साथी शिल्पकारों के द्वारा निर्मित किए गए या खोदे गए इन भवनों को पेशेवर मूर्तिकारों और चित्रकारों ने अलंकृत किया होगा। इनके लिए राजाओं और बड़े व्यापारियों से बहुत धन प्राप्त हुआ होगा, जिससे कि ऐसे निर्माण हो सके जो महत्वाकांक्षा और पवित्रता दोनों की को संतुष्ट कर सके। जो चित्र बनाए गए हैं उनसे चित्रों के समय की परिस्थितियों का परिचय मिलता है। दीवारों और छतों पर ऐसे दृश्य बने हैं जो दरबार और संसार का जीवन, एक भक्त का जीवन और धर्म का इतिहास प्रकट करते हैं। चित्रों की पहली श्रेणी जीवन के आनंद से आप्लावित है। वे इस जगत की आकांक्षा और गौरव से स्पंदित हैं। उनमें राजसी वैभव और आडंबर के, युद्ध और आखेट के, गर्व तथा विजय के दर्शन होते हैं, और ये जीवन के दैनंदिन सरोकारों में, प्रेमाचार में, भोज, गायन और नृत्य के आनंद में, कीमतों, खरीद और बिक्री के मोल तोल वाले बाजार की व्यवस्थता में, भी बहुत रुचि प्रकट करते हैं। वे मनुष्य और समाज के उस मध्यान्ह ज्वार का प्रतिनिधित्व करते हैं जब यौवन, महत्वाकांक्षा और शक्ति की स्फूर्ति तेजी से शिराओं में प्रवाहित होता है। किंतु जीवन सिर्फ मध्यान्ह ही नहीं है, क्योंकि सूर्य को अपना मार्ग तय करना ही होता है और शाम के ढलने पर छायाओं को लंबा होना ही है। आयु की प्रज्ञा और विरक्ति के बिना संस्कृति का संश्लेषण अधूरा है, इसलिए दूसरे दर्जे के भी चित्र हैं जो मृदु, उत्तेजनाहीन और शांत से जीवन का चित्रण करते हैं। इन चित्रों से अनंत और के झुकावों के साथ पहली दुनिया का स्वस्थ स्वर और उचित नजरिया प्राप्त होता है। वे बुद्ध के जीवन के, उसके संघर्षों और विजयों के, कल्याण और धर्म प्रचार के, सघन जीवन के, पिछले जीवन की कहानियों के और उन दृष्टांतों के चित्र हैं जो उपदेशों को समाप्त करते हैं। किंतु दोनों संसार एक दूसरे से परे हैं। वे एक दूसरे के साथ जाल और संजाल बनाते हैं, क्योंकि वे एक ही वस्त्र के अलग अलग रूप हैं। दोनों के कलात्मक रूप में एक ही सौंदर्य बोध है। उनके चित्रों में जीवन के गहन दबाव की वह चेतना है जो हिंदू वास्तुकला में देखी जा सकती है। आकृतियां एक दूसरे पर लदी हुई हैं। पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को सभी भंगिमाओं और भावों में अव्यवस्थित रूप से एक जगह रख दिया गया है। उनकी संख्याएं अनगिनत है। हर रूप, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, चट्टान हो या झरना, पशु हो या पक्षी, फूल हो या पेड़, मानव हो या महामानव, एक जैसे रोचक और पवित्र हैं, क्योंकि ये सभी ईश्वर को ही अभिव्यक्त करते हैं। सभी की पवित्रता की यह अभिव्यक्ति उस आश्चर्यजनक आत्मीयता के माध्यम से प्रकट होती है जो कलाकार मानवीय और अमानवीय आकृतियों के बीच में, मनुष्य और भूदृश्य के बीच में, मनुष्य और वास्तुकला के बीच में, मनुष्य, प्राणियों और वनस्पतियों के बीच में और उन सभी के बीच में स्थापित रहता है। गाय और बैल बुद्ध के उपदेश सुन रहे हैं। हंस राजकुमार को अपनी कहानी सुना रहा है। देवदूत और देवता उपदेशक के आसपास मंडरा रहे हैं। पृथ्वी और स्वर्ग के सभी प्राणी उसे सुनने के लिए उसके आसपास खड़े हैं। राक्षस और पक्षी और मनुष्य आपस में झगड़ रहे हैं। सिंह, सर्प और मनुष्यों की भीड़ क्रोध और आतंक में एकजुट है। हाथियों घोड़ों और सशस्त्र सैनिकों के जुलूस शहर के प्रवेश द्वारों और दीवालों और दरवाजों के भीतर बाहर से गुजर रहे हैं, और पशु और मनुष्य उनके साथ उसी लय से आ जा रहे हैं। पुरुष और स्त्री चट्टानों के बीच में खड़े हैं और पेड़ों की छतनार शाखाएं तंग घाटी को और गहरा रही हैं, और उन सभी के ऊपर शांति व्याप्त है। पौधों की जड़ें चट्टानों की दरारों से झांक रही हैं, उनकी नाजुक शाखाएं और छरहरे तने उनसे लिपटते हुए ऊपर जा रहे हैं। घने भूदृश्य से होकर नदी बह रही है और नदी के तल पर मछलियां, नौकाएं और जानवर तैर रहे हैं। महिलाएं झरोखों से झांक रही हैं और लॉकेट के समान दिख रही हैं। दीवालों के पैनल अलंकृत हैं। स्वागत कक्ष में दरबारियों, राजदूतों और अधिकारियों के साथ केले के पेड़ खड़े हैं। विलक्षण शैतानों में, भयानक दिखने वाली आकृतियों में, आधे मानव और आधे पक्षियों की आकृतियों में, हवा में उड़ रही अप्सराओं और यक्षों में, भालू और आदमी के बीच हो रही लड़ाई में, सांप और हाथी की लड़ाई में और सांडों की लड़ाई में ऐसी ही भावनाएं प्रकट की गई हैं। श्रेष्ठ और निकृष्ट जगत की सभी ज्ञात प्रजातियों और जीवों की विशेषताओं को चित्रित करने की कोशिश में ऐसे ही भाव प्रकट हुए हैं। जीवन की संकुलता की गहराई को जिस माध्यम से अंकित किया गया है वह माध्यम है रेखा। सभ्यता का यह रहस्य स्पष्ट नहीं है कि कला की भाषा के रूप में यूरोप में रंग को और एशिया में रेखा को क्यों चुना गया। जो भी कारण हो, पर जो भी नतीजे दिखे, उनसे यह चुनाव पूरी तरह न्यायसंगत दिखता है। हर सभ्यता ने अपने स्वयं के माध्यम से अपनी सर्वोच्च सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार पश्चिम के लिए जो महत्व रंग का है, पूर्व के लिए वही महत्व रेखा का है, क्योंकि उसकी शैलियां उनकी रेखा के चरित्र के अनुसार विभाजित हैं। अजंता के कलाकार के द्वारा प्रयुक्त की गई रेखा अपनी दृढ़ता, चौड़ाई और प्रवाह में अनोखी है। विस्तृत स्थान पर वह बिना हिचक के दृढ़ता से और अबाध ढंग से लहराते हुए एक जैसी और लयात्मक ढंग से चलती है। वह उतनी ही कुशलता से प्रकाशमान बुद्ध की शांति गीत और नृत्य में रमे हुए भक्त की विह्वलता और उत्सुक और प्रकंपित भावनाओं का चित्रण करती है। कलाकार को चाहे हवा में तैरने का तनाव बताना हो, पौधे और पेड़ का ऊपर उभरना बताना हो, हाथी की लहराती सूंड बताना हो या हाथों की आश्चर्यजनक मुद्राएं बताना हो, वह बहुत ज्ञान और सफलता से रेखा का उपयोग करता है। उतना ही कुशलता से वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, मनुष्य और प्रकृति के रूपों, आदर्शवादी या वास्तववादी अंकन करता है। वास्तव में छत या दीवारों के विस्तृत तल पर जिस रेखा का उपयोग चित्रकार ने किया है, उसे छोड़कर अन्य किसी किस्म की रेखा का उपयोग करना संभव असंभव था। भारतीय चित्रकार की रेखा अपने कोमल स्वरूप में और अपने वक्रों की कोमलता, लयात्मकता में भारतीय मूर्तकला और वास्तुकला की सुनम्यता के अनुरूप ही है। अजंता के भित्ति चित्र बनाने के लिए प्लास्टर की दो परतों के आधार भूमि तैयार की जाती थी। नीचे की परत मिट्टी, गोबर और चट्टान के चूरे के मिश्रण से और कभी कभी बारीक भूसे या चावल की भूसी से तैयार की जाती थी। दीवारों के खुरदरे तल को छिपाने के लिए यह परत एक इंच के आठवें हिस्से से लेकर 3/4 इंच तक मोटी होती थी। इस आधार पर अंडे के छिलकों जैसा बहुत महीन सफेद प्लास्टर किया जाता था, जिस पर पॉलिश किया जाता था। इस प्रकार तैयार किए गए तल पर चित्रण किया जाता था और इसके लिए भित्ति चित्र और की पद्धति का उपयोग किया जाता था। प्लास्टर के सूखे तल को एक रात पहले पानी से खूब भिगो दिया जाता था और अगली सुबह उसे फिर से चूने के पानी से भिगोया जाता था। नमतल पर धातु से और वनस्पतियों से बनाए गए रंगों से चित्र बनाए जाते थे। प्लास्टर पर पहले लाल रंग से चित्र की रूपरेखा बनाई जाती थी, किंतु उसे बाद में जरूरत पड़ने पर काले या भूरे रंग से सुधारा जाता था। उसके बाद तल पर हरे रंग का अर्ध पारदर्शी आवरण चढ़ाया जाता था। उसके ऊपर स्थानीय रंग चढ़ा दिए जाते थे। जिन रंगों का उपयोग होता था वे थे चूने का सफेद, सल्फेट, गैरू, हरा लौह, सिलिकेट और नीला। चित्र में जो विभिन्न प्रकार के रूपांकन किए जाते थे वे ध्यान देने योग्य हैं। मानव आकृति कोमल है और उसमें मांसपेशियां या शरीर रचना की बारीकियां नहीं हैं। आंखें बादाम की तरह लंबी हैं, हाथ अर्थवान है, भंगिमा आकर्षक है, बालों के छल्ले बनाए गए हैं और सिर के पीछे जुड़ा बनाया गया है या बाजू में बालों की कुंडली बनाई गई है और बहुधा बालों को फूलों से अलंकृत किया गया है। शरीर आकृति का पृष्ठ भाग पार्श्व या अर्ध पार्श्व का भी अंकन किया गया है। उच्च वर्ग की पारदर्शी कपड़ों से बनी पोशाक से लेकर सैनिकों और सेवकों के मोटे जैकेट और चूड़ीदार पायजामे बनाए गए हैं और कई प्रकार की पगड़ियां भी चित्रित की गई हैं। अलंकारों का भरपूर उपयोग किया गया है। कई जानवरों का चित्रण किया गया है। हाथी का अंकन अद्भुत बारीकी से किया गया है। घोड़ों के शरीर पुष्ट और गोलाई लिए हैं और सिर ऊंचे और रोमन शैली के नाक वाले हैं। उनके ऑयल सुअर के तरह है। पूंछ सफाई से बनाई गई है और पैरों में पैजनिया है। हिरणों के चेहरे गाय के बछड़ों की तरह है। सिंह वृक्ष है और असीरिया के प्रजाति से कुछ मेल खाते हैं। भैंसे, बैल, बंदर और अन्य जानवर उल्लेखनीय नहीं है। चिड़ियों में हंस और मोर उल्लेखनीय है। भूदृश्यों में चट्टानों और आयताकार आकृतियों के ढेर के रूप में बनाया गया है और उनके सिरे तराशे गए हैं। पानी को पारंपरिक रूप से टोकनी की तरह या लहरों के छल्ले के रूप में बनाया गया है। मछलियां, कछुए और जल पुरुष प्रतीकों के रूप में बनाए गए हैं। बादलों में पत्ते और गोलाई लिए हुए बहुत से रूप हैं, जिनके सिरे गुलाब की पंखुड़ी या मछली के पत्ते के रूप में है। वनस्पतियों में केला, सुपारी, ताड़, अशोक, बरगद और पीपल का, तथा फलों में आम, सीताफल, अनार, कद्दू तथा फूलों के कमल का चित्रण बहुलता से किया गया है। अजंता की कला वहां अंतिम भित्ति चित्र बनने के बाद भी विद्यमान रही, किंतु उसके शायद ही कोई ऐसे उदाहरण है जो यह बताए कि उसमें आगे क्या विकास हुआ। कुछ जैन और बौद्ध ताड़पत्र की पांडुलिपियों में बिना तिथियों के धार्मिक चित्र बने हुए हैं। अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता की 1090 ईस्वी की नेपाली या बिहारी पांडुलिपि 15वीं सदी के अंत में बने ग्वालियर के मान मंदिर के पैनल, तारानाथ का इतिहास और रेत में दबे सेरिंडिया के शहरों में मिले चित्रों के अवशेष प्राचीन परंपरा की निरंतरता को प्रकट करते हैं। वास्तव में भारतीय चित्रकला का दूसरा काल 900 साल की रिक्तता के बाद भारत के चगताई शासकों से शुरू होता है। इस काल के चित्र एक नई शैली के हैं, एक ऐसी शैली जो प्राचीन परंपरा द्वारा भारत की सीमाओं के पार के नए तत्वों को आत्मसात करने से उपजी थी। हिंदू मुस्लिम कला की एक नई शैली की चर्चा करने से पहले समरकंद, हेरात, इस्फान और बगदाद की इस्लामी शैली की चित्रकला की विशेषताएं जानना जरूरी है। यहां उन कड़ियों को खोलना संभव नहीं है जिनके जरिए मुस्लिम कला पश्चिम की प्राचीन और ईसाई कला से और पूर्व की चीन, खोतान और गांधार की कला से संबद्ध है, किंतु जब यह कला 14वीं सदी में अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रकट होती है तो यह पूर्व के रंगों में इतनी रंगी होती है तो इसे चीनी कला की एक शाखा समझने की गलती हो सकती है। तिमूर के अंतर्गत यह मुस्लिम मंगोल शैली अधिक वैयक्तिक, अधिक स्वतंत्र हो जाती है और फिर वह क्रमशः सफवी और बुखारी शैली में चली जाती है। तिमूरी शैली का जनक गुंग था, जिसे नकवत उल मुहर्रीन की पदवी दी गई थी, जिसका शिष्य बुखारा निवासी जहांगीर था, जो पीर सैयद अहमद का गुरु था। पीर सैयद अहमद का शिष्य बेहजाद 15वीं सदी के अंत में पैदा हुआ था और वह खुरासान के तैमूर वंशी शासक मंसूर इब्न बेकरा का दरबारी चित्रकार था। 1506 में उसने हेरात छोड़ा और शाह इस्माइल सफर भी की सेवा में आ गया और सफवी वंश की सेवा में 1526 ईस्वी में अपनी मृत्यु होने तक रहा। इस दौरान वह ज्यादातर तबरीज में रहा। जब बाबर ने भारत को विजित किया तब बेहजाद अपने शिखर पर था और उसकी शैली परिपूर्णता का मानक थी। बाद में ईरान के निर्वासन से हुमायूं के भारत लौटने पर चगताई अमीरों ने बेहजाद को एक गुरु के रूप में भारतीय चित्रकारों के सामने रखा, जिससे वे उसके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें और उसके चित्रों की नकल कर सकें। इस प्रकार बेहजाद और उसकी शैली भारतीय चित्रकारों के लिए एक आदर्श बन गई और तिमूरी शैली के तत्व भारतीय परंपरा से जुड़ गए। इस कला की विशेषता है इसकी गहन वैयक्तिकता। इस कला की रुचि जन समाज और भीड़ में नहीं है, संयोजन में इसकी शायद ही कोई सीधी रुचि है। यह चीजों को स्वच्छ प्रकाश में और सुनिश्चित रेखाओं में देखती है। यह व्यक्ति की आकृति की बारीक बातों को देखती है और उसके बाद बहुत मेहनत करती है। वह अत्यंत प्रबलता से जीवन की ललक को महसूस करती है और जो कुछ भी चित्रण वह करती है उसमें उस तीव्र ऊर्जा का संचार करती है, किंतु यह रूपों के आपसी संबंधों और रूपों की अनंत अनेकता को महसूस नहीं करती और न ही उसकी चिंता करती है। उसके जीवन की धड़कन भिन्न है और लय भी भिन्न है। इस कला ने संसार को हिला देने वाले चंगेज और तैमूर के दरबार में जन्म लिया और वहीं पली बढ़ी। संभव इसलिए वह कोमल और भाविक नहीं थी। स्वाभाविकतः इसमें युद्ध, घेरा और आखेट के दृश्य और मनुष्य और जानवरों की लड़ाइयों का अक्सर चित्रण किया गया है, किंतु शौर्य और प्रेमाचार, लैला की लड़ाइयों का लैला और मजनू, श्री और फरहाद के प्रेम झरने के किनारे, बगीचे में युवा और सुंदरियां, शाही दरबार में भव्य स्वागत समारोह, भोज और उत्सव, जहां मदिरा मुक्त रूप से परोसी जाती है, इन सब को समान रूप से चित्रित किया गया है। पवित्रता और रहस्यवाद की भी कमी नहीं है, क्योंकि आत्म त्याग और जीवन से के गहन आनंद से संतृप्ति के कठोर अनुशासन में जाना कभी कठिन नहीं था। राजा और भिखारी ऐसे दो ध्रुव थे जिनके बीच में व्यक्ति सदैव रहता था। आज का सुल्तान कल का दरवेश हो सकता है, नहीं, राजा हमेशा अपने हृदय में एक योगी होता है। इसलिए दरवेश को चित्रों में कई बार दर्शाया गया है। घने जंगलों और एकाकी गुफाओं में रहता हुआ दरवेश मेमनों जैसे पशुओं का नेतृत्व करता हुआ चमत्कारिक स्वामी के रूप में दरवेश और रहस्यमय आनंद के परमानंद में नित्य करता हुआ दरवेश इस प्रकार रोमांस, विजय और चमत्कार में बहुत रुचि रखता था। जिन्न, पिशाच, दानों और परियां मनुष्यों के बीच ऐसे विचरण करते हैं जैसे वे जाने पहचाने और परिचित हों। ये जितनी कहानी कहने वालों में लोकप्रिय थे उतने ही चित्रकारों में भी। हर दृश्य में उसकी निजता की छाप स्पष्ट है। चित्र के संयोजन में एक पद्धति क्रम और एक व्यवस्था है जो कभी कभी संयोजन के लिए घातक सिद्ध होती है, किंतु हर व्यक्ति की एक निश्चित दर्जा और मान्य स्थिति है और हर व्यक्ति अपने काम में पूरी ऊर्जा के साथ लगा हुआ है। हर पात्र की गति पूरे चित्र को गति देती है, न कि पूरे चित्र को गति हर पात्र के जरिए प्रकट होती है। घेरे के चित्र को ही लीजिए। एक व्यक्ति अपनी विशाल कुल्हाड़ी को घुमाते हुए बंद दरवाजे पर जोरदार प्रहार कर रहा है। वह ऊपर से बरसने वाले गोलों के प्रति बिल्कुल बेखबर है। दो लोग सीढ़ी से चढ़ रहे हैं और इतने आत्मविश्वास से भरे और आत्म केंद्रित कि वैसा कभी भी कोई नहीं रहा होगा। आसमान के तारे चाहे अपने रास्ते पर चलना बंद कर दें, किंतु उन लोगों को कोई भय नहीं है और वे लोग रुकना जानते ही नहीं। घोड़े पर बैठा घुड़सवार पागल होकर उन तख्तों पर झपट रहा है जो खाई पर डाले गए हैं। शिकार के चित्र को लीजिए। घुड़सवार एक अर्धवृत्त बनाते हैं, बीच में जो खाली स्थान है उसमें शाही शिकारी जानवरों को अपने भाले से छेद रहे हैं। हर हरिण और हर घुड़सवार को अलग ढंग से चित्रित किया गया है और कोई अव्यवस्था नहीं है। एक चित्र में इमारत बनाने वाले मस्जिद खड़ी करने में व्यस्त हैं। एक मजदूर मिट्टी का गारा मिला रहा है। दो या तीन भिस्ती गोलाकार में खड़े होकर अपने मशक में पानी डाल रहे हैं। एक आदमी गारा ढो रहा है, दूसरा ईंट ढो रहा है। दीवारों पर राजगीर ईंटें जमा रहे हैं या फिर उन्हें एक के ऊपर एक रख रहे हैं। सीढ़ी दीवार पर लगी हुई है। सब और कुछ न कुछ काम चल रहा है, किंतु कोई कोलाहल नहीं है। भोज के चित्रों में हर व्यक्ति पर अलग से ध्यान दिया गया है, यहाँ तक कि नर्तक और संगीतकार आपस में नहीं मिल जाते। जब योद्धा लड़ रहे होते हैं वे खुद को व्यवस्थित कर लेते हैं। घोड़े संवारे जा रहे हैं, बाजू में भाला और तलवार लटक रहे हैं, यहाँ तक कि पेड़ों के पत्ते भी बाहर निकले हुए हैं जिससे उन्हें अलग से गिना जा सके। व्यक्तिकता में यह रुचि इस सीमा तक बढ़ी हुई है कि चित्र केवल व्यक्ति चित्र बनकर रह जाता है और यह ऐसा व्यक्ति चित्र है जो चमत्कार पूर्ण दक्षता से बनाया गया है और अत्यंत श्रेष्ठ है। अजंता के समान इन चित्रों में भी रेखा अभिव्यक्ति का माध्यम है, किंतु दोनों रेखाओं के चरित्र में कितना अधिक अंतर है। यह रेखा झुकती है और टूटती है, पतली है और मोटी है, वृत्त और कोण बनाती है। संक्षेप में यह रेखा वह सब करती है जिसकी मांग एक तुनक मिजाजी सुलेखक करता है। मुसलमानों में रेखा गणितीय आकृतियों और शिलालेख विद्या के प्रति जो झुकाव है वह सुलेखन का स्वयं उसकी नीति चीज बना देता है। इन चित्रों को बनाने में जिन तत्वों का संयोजन हुआ है वे अजंता के चित्रों से भिन्न है। मनुष्यों की प्रजाति ही भिन्न नहीं है, बल्कि शरीर और अंगों का अनुपात और उनकी लय भी भिन्न है। भंगिमा अत्यंत शालीन है और उन पर ऊंची संस्कृति की छाप है। रेखा के सहज प्रवाह से बनाए गए कपड़े आकर्षक हैं। पशुओं के चित्रण में घोड़े पर विशेष ध्यान दिया गया है। फुर्ती, हल्कापन और छरहरापन इसके आदर्श हैं, जैसा कि मृगों और हरणों के चित्रण में किया गया है। सिंह का चित्रण शक्तिशाली है। लटकती हुई शाखाओं वाले छरहरे पल्लवित वृक्ष, जिन पर फूलों वाली लताएं लिपटी हुई हैं, गांठों वाले और हमेशा झुके हुए पेड़ और फूलों से ढकी हुई जमीन उल्लेखनीय है। बादल हमेशा समुद्र के घोंघों के समान भंवरदार चीनी रेखा से बने हैं। चट्टाने नागफनी के गोल आकार वाली हैं। पेड़ झाड़ियां जमीन पर उगी हुई हैं। मैदान लहरदार हैं। सकरे नालों के किनारे पत्थर हैं और अक्सर सामने एक अकेला पेड़ खड़ा हुआ है। स्थापत्य ईरानी है। इसमें रेखा गणितीय आकृतियों से सजावट की गई है और उसे पीछे के तथा बाजू के बगीचों से उसे अलग दिखाने के लिए रेलिंग बनाई गई है। चित्र में स्थापत्य एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वह पूरे दृश्य को व्यवस्थित बनाता है, किंतु चित्र में अंकित चरित्रों से उसका निकट संबंध नहीं है। मुगल सम्राटों के संरक्षण में इन दो कला चेतनाओं के मिलने से एक नई शैली का जन्म हुआ। अजंता की कोमलता पर संतुलन, अनुपात और दूरी के नियमों को लागू किया गया, जो समरकंद और हेरात से आए थे। पुराने शान में नया वैभव जुड़ा और जीवन की पुरानी मुक्त और सहज कोमलता में दरबारी औचित्य और कठोर शिष्टाचार सम्मिलित हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों की कुछ ऊर्जा और गतिशीलता का बलिदान हुआ और एक कठोर गर्मा प्राप्त हुई, किंतु उसके साथ ही रंग की अद्भुत संपन्नता और रेखा की कोमलता भी मिली। नई शैली का विकास तेजी से हुआ। संभवतः बाबर ने आगरा में हिंदू और मुस्लिम कलाकारों को तैमूरी के नमूने से परिचित करवाया। हुमायूं के अंतर्गत चित्रों की प्रतिलिपि बनाने का काम जारी रहा। इस कारण जब अमीर हमजा की दास्तान की रचना 12 जिल्दों में हुई और करीब 1400 कंडिकाओं के लिए चित्र बनाए गए, तो यह काम करने के लिए काफी संख्या में प्रशिक्षित कलाकार मौजूद थे। उनमें निश्चित रूप से ईरानी और कलमक तो थे, किंतु सिर्फ वे ही नहीं थे। काम आश्चर्यजनक रूप से बड़ा था और यह संभवतः अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में खत्म हुआ। इस प्रारंभिक शैली में भी यह बात रोचक है कि जिसे क्लार्क ने हुमायूं की शैली कहा, निसंदेह रूप से एक भारतीय संवेदना थी। बादलों, चट्टानों, पानी, पेड़ों और जानवरों के चित्रण में भूदृश्य और स्थापत्य के चित्रण में तैमूरी शैली का प्रभाव प्रबल है, किंतु चेहरों, पोषकों और भंगिमा में अधिक स्वतंत्रता थी और समूह चित्रों में उससे भी अधिक स्वतंत्रता थी। अकबर के समय के परवर्ती कलाकार संभवतः 4 मुस्लिम उस्तादों के अंतर्गत प्रशिक्षित हुए, जिनके नाम अबुल फजल देता है, फारूक कलमक, अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली तबरीजी और मिस्कीन। जो हिंदू शिष्य थे वे निश्चय ही ऐसे चित्रकार थे जो परंपरागत शैली में दक्ष थे और उनकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि वे शाही दरबार में बुलाए जा सके। उन्हें सिर्फ अपनी प्रतिमा को अपने नए स्वामियों को स्थानांतरित करना था और ऐसे चित्र बनाने थे जिनसे वे प्रसन्न होते थे। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि क्यों अकबर के शासन में इतनी जल्दी हिंदू मुस्लिम शैली पूर्ण विकसित रूप से सामने आई। दशबंत, बसावन, केशुलाल, मुकुंद, माधे, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांवला, हरिवंश और राम के नामों का उल्लेख आईने अकबरी में है। उस काल के चित्रों में अन्य कई हिंदू नाम हैं, उदाहरण के लिए तैमूर नामा के चित्रों में। इसमें तैमूर का और उसके उत्तराधिकारियों का अकबर के शासन के 22वें साल तक का वर्णन है। इसकी जो पांडुलिपि बाकेपुर की खुदाबख्श लाइब्रेरी में सुरक्षित है, उसमें तुलसी, सुरजन, सूरदास, ईसर, शंकर, रामास, बनमाली, नंद, नन्हा, जगजीवन, धर्मदास, नारायण, चतरमन, सूरज, देवजिया, शरण, गंगा सिंह, पारस, धन्ना, भीम आदि के नाम मिलते हैं। कहीं कहीं उस स्थान का नाम भी है जहां से कलाकार आया। और यह बात रोचक है कि केवल ग्वालियर, गुजरात और कश्मीर के नामों का उल्लेख है। मध्यकाल के प्रारंभ में भारतीय संस्कृति के ये तीन प्रमुख केंद्र थे और अकबर के चित्रकार इन स्थानों से आए। इस परंपरा की पुष्टि होती है कि अजंता के बाद भी हिंदू कला विकसित होती रही। इससे इस निष्कर्ष को भी पुष्टि होती है कि मुगल कला मध्य एशियाई और ईरानी शैली की ही शाखा नहीं थी, बल्कि प्राचीन भारतीय कला का नई प्रेरणा के अंतर्गत नया विकास था। जहांगीर के अंतर्गत भारतीय शैली नकल से पूरी तरह मुक्त हो गई। व्यक्ति चित्र और सामान्य रूप से उत्कृष्ट बनने लगे और आखेट के दृश्य बहुत लोकप्रिय हो गए। शाहजहां के शासनकाल में यह कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। प्रभाव और दूरी प्रकट करने के नियम, प्रकाश छाया के नियम लागू किए गए। उत्तम प्रकार की कूचियों और अत्यंत चित्रकारों में हिंदुओं की संख्या बहुत थी। कल्याण दास उर्फ चतरमन, अनूप चतर, राय अनूप और मनोहर नाम के हिंदू तथा मोहम्मद नादिर समरकंदी, मीर हाशिम और मोहम्मद फकीर अल्लाह खान नाम के मुस्लिम चित्रकारों का स्मिथ विशेष उल्लेख करते हैं। मोहम्मद नादिर समरकंदी व्यक्ति चित्रों का समरकंदी सर्वोच्च चित्रकार था। शाहजहां के बाद चित्रकला के प्रति रुचि क्रमशः गिरती गई और उसका पतन हो गया। दरबार के चित्रकार अक्सर व्यक्ति चित्र बनाते थे या दृश्यों का चित्रण करते थे। व्यक्ति चित्रों में कलाकार का मुख्य उद्देश्य चेहरे के सभी तत्वों को स्वाभाविक और सच्चे रूप में चित्रित करना और उनके जरिए संबंधित व्यक्ति के चरित्र को उभारना होता था। अधिकतर व्यक्ति चित्र पार्श्वमुखी या एक चश्मी होते थे और कभी कभी तीन चौथाई चेहरा दिखाया जाता था। सब मिलाकर शरीर की स्थिति रूढ़िगत होती थी, किंतु हाथों को हमेशा बहुत आकर्षक तरीके से चित्रित किया गया। किसी महाराजा जसवंत सिंह के चित्र और मोहम्मद नादिर समरकंदी के द्वारा बनाए गए आसफ खान के चित्र को यह बताने के लिए सामने रखा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के लोगों के चित्र कितने बारीकी से बनाए गए थे। प्रारंभिक काल के चित्रों में युद्ध और विजय के दृश्यों का पर अधिक ध्यान दिया गया, खासकर दारा बनामा, तिमुरनामा, रज्मनामा ग्रंथों के चित्र बनाते समय शिकार और जंगल के दृश्य भी बहुत बनाए गए। बाद में दरबार, धार्मिक विषय, दैनिक जीवन, घरों और सजावट के चित्रों में रुचि विकसित हुई। इन सभी में एक रहस्यमय रुचि तो हमेशा प्रकट होती है। धार्मिक घटनाओं, दरवेशों के चित्र, योगियों से दैवी ज्ञान की शिक्षा लेते हुए राजकुमारों के दृश्यों, मस्जिदों में हो रही नमाजों या दिए के प्रकाश में कुरान के अध्ययन या संतों के सम्मेलनों के चित्र, अकबर के समय के बाद अल्बमों के चित्र संग्रहों में बिखरे पड़े हैं। यह हिंदू मुस्लिम शैली एक ओर तो अजंता के भित्त चित्रों से संबंधित है और दूसरी ओर समरकंद तथा हेरात के सच्चे लघु चित्रों से संबंधित थी। इस शैली की शाखाओं में अलग प्रकार की विशेषताएं थी। जयपुर की राजपूत शैली, कांगड़ा और हिमालय की श्रेणियों के हिंदू राज्यों की पहाड़ी शैलियों का झुकाव प्राचीन हिंदू चित्रकला की ओर था। दक्षिण लखनऊ, कश्मीर और पटना कला का अधिकतर झुकाव मुस्लिम चित्रकला की ओर था और सिख कलम इनके बीच में कहीं थी, किंतु ये सभी शैलियां उसी मूल से निकली थी जो दिल्ली या आगरा के दरबार की शैली थी। हाँ। इस बिंदु पर इसलिए जोर देने की जरूरत पड़ी कि कुमारस्वामी में राजपूत और मुगल शैली के बीच अंतर पर अकारण ही जोर दिया है। चित्रों की तकनीक में जो अंतर है वह नगण्य है और चित्र चाहे फारसी हो, मुगल हो, ईरानी हो, उनकी प्रक्रिया एक जैसी है। विषय का चुनाव शासक की परंपराओं के अनुसार होता था। हिंदू दरबारों में चित्रकार को हिंदू पौराणिक कथाओं के चित्रण का मौका मिलता था, जबकि शाही दरबारों में उसे विजय के यश के चित्रण का मौका मिलता था। इसमें संदेह नहीं कि राजपूत शैलियों में ज्यादा स्वतंत्रता की और विविधता है, क्योंकि उनके सामाजिक रीति रिवाज मुगलों से भिन्न थे, किंतु दोनों कलाओं का सौंदर्य बोध एक जैसा है। कुछ प्रकार के चित्रों में हिंदू चित्रकार की रेखा में अजंता का स्पर्श ज्यादा है, अन्यथा उसमें जीवन का सौंदर्य उतने ही पैने, गहन, सुपरिभाषित और वैयक्तिक तरीके का उपयोग किया गया है, जैसा कि मुगल चित्रकार के द्वारा किया गया है। राजपूत चित्रों का जो विवरण कुमारस्वामी ने दिया है वह स्वयं उस सच्चाई की पुष्टि करता है। जो पहले तीन चित्र जरा रुक्षता से किंतु दृढ़ता से बनाए गए हैं, वे बिल्कुल मुगल शैली के समान हैं। रागनिया और नायिकाएं राजपूत महिलाएं हैं, जो ईरानी महिलाओं के समान पल्लवित वृक्ष की डालियों के नीचे बैठी हैं। रेखांकन की सुस्पष्टता, स्थानों का खालीपन, अलंकारों और पोषकों की बारीकियों के प्रति लगाव, मनोरम दृश्यावली, सुंदर हावभाव, ये सभी ईरानी कला के हिंदू रूप हैं। विषय वस्तु चाहे हिंदू समाज की हो, रेखांकन व्यवस्था, रंग योजना मुगल या हिंदू मुस्लिम है। वास्तव में चित्रकला में भी वही समन्वय हुआ जैसा कि वास्तुकला में हुआ। यदि अकबर ने फतेहपुर सिकरी की दीवारों को चित्रों से अलंकृत किया तो बीकानेर और उदयपुर के महाराजाओं ने इसका अनुगमन किया और न सिर्फ उनके भवन समान थे बल्कि अलंकरण भी उसी तरह था। मुस्लिम शासकों ने कला और साहित्य का संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत किया और हिंदू राजाओं ने उनका अनुगमन किया। फिर स्वाभाविकतः यह हुआ कि मुगल दरबार में हिंदू और मुस्लिम कलाकारों द्वारा निर्मित शैली को स्थानीय परिवर्तनों के साथ जयपुर, जम्मू, चंबा, कांगड़ा, लाहौर, अमृतसर और सुदूर तंजौर द्वारा अपनाया गया और पूरे भारत में एक जैसी शैली व्याप्त हो गई।